1968 पतित पावन ज्ञान सागर शिव भगवान वाच और वाच करते हैं पतितों को पावन बनाने वाला ज्ञान का सागर है वो बताते हैं बच्चे जानते हैं सतयुग है पावन राम राज्य और कलयुग है पतित रावण राज्य तो गोया सभी आसुरी रावण संप्रदाय हो गए ऐसे भी हैं आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय आसुरी संप्रदाय भ्रष्टाचारी संप्रदाय जो भी है सब भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले हैं परंतु किसको कहो कि तुम भ्रष्टाचारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे किसको कहो तुम स्वर्ग के चलने लायक नहीं हो लायक के बदले नालायक कहो तो बिगड़ पड़ेंगे तो ये अक्षर यहां ही काम आते हैं बच्चे यहां आते हैं तो समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाते हैं नरसिंह नारायण बनने के लिए नारी से लक्ष्मी बनने के लिए अब भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी परंतु तुम अभी सत्यनारायण की कथा प्रैक्टिकल में सुन रहे हो सुनाने वाला है बाप और कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं फिर भक्ति मार्ग में अभी प्रैक्टिकल की बातें पाठ में पांच की कथा ही सुनेंगे अभी जो कुछ होता है वो सभी कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है ज्ञान मार्ग में होता ही है प्रैक्टिकल फिर इन प्रैक्टिकल बातों का भक्ति मार्ग में जाहिर होगा तुम फिर भी पुजारी बन जाओगे अभी तो तुम पूज्य बन रहे हो बाप कहते हैं तुम्हें ही पूज्य है तुम्हें ही पुजारी बनते हो पूज्य कैसे बनते हो फिर पुजारी कैसे बनते हो पूज्य कौन बनाते हैं पुजारी कौन बनाते हैं ये तुम जानते हो ऐसे पूज्य बनते हो पवित्रता की धारणा करने से पूज्य बनते हो संग के रंग से पूज्य बनते हो बुद्धि का संग करते हो ना एवं प्यार के साथ फिर पतितों का संग करने से पुजारी बन जाते हो और पूज्य बनाने वाला भी एवं प्योर है पुजारी कौन बनाते जरूर कहेंगे ये गुरु लोग तो इन बातों को पढ़ाई कहा जाए भक्ति मार्ग में तो मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है इसलिए उनको कहा जाता है पत्थर बुद्धि आसुरी बुद्धि पौड़ी जैसे भी नहीं उसके कहा जाता है हीरे जैसा जन्म बोले जन्म भी तुम्हारा आदि है तुम हीरे जैसे बन रहे हो हीरा चमक मारता है ना तुम भी सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगे जैसे हीरा अंधेरे में चमक मारता है। फिर 84 जन्मों के बाद कौड़ी वजह से बच जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी इस समय कौड़ी जैसे हैं। तो उनकी पूजा क्यों करें? ये जब हीरे मिसल थे परंतु आत्मा कहां गई जिनको ये लक्ष्मीनारायण का शरीर मिला था? वो पुनः जन्म लेते लेते आकर के दौरे का छोरा बन। विश्वका वाली और कहा फिर गावड़े का छोरा। कितना फर्क हो जाता है एक ही जन्म में। नॉलेज की बात है ना, ये नॉलेज भी तो बच्चों को अभी मिलती है। भक्ति मार्ग में तो कितने गपोड़े हैं। कहते हैं जन्म जन्मांतर पुरुषार्थ करते रहो, भक्ति करते रहो, कल्प की आय भी कितनी लंबी चौड़ी करती है। अभी तुम जानते हो ये है चैतन्य वृक्ष मनुष्य सच्ची का। अब इनकी आय लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिलता है तो तुम समझते हो अब सचमुच पहले बंदर सेना थी जिन द्वारा बाप इस रावण राज्य को खलास करा करके नई दुनिया बनाते हैं। पहले बंदर मिसल थे, अभी बंदर से मंदिर नायक बनते हैं, देवता बन जाते हैं। बच्चे जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का हम अपना राज्य योगबल से स्थापन करते हैं। बाहुबल से कोई भी विश्व पर राज्य नहीं कर सका। बड़े बड़े हिस्ट्री में हुए हैं, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी। अभी ये देखो ये क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है। ये पौना हिस्सा दुनिया पर जैसे राज्य करते थे, परंतु सारे विश्व पर तो राज्य नहीं कर सके। ऐसे भी कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न भाई लोग बाहुबल से अथवा लड़ाई के बल से राज्य करते थे। अफ्रीका, चीन, जापान, हिंदुस्तान में जैसे कि इनका ही राज्य था, परंतु कोई भी बाहुबल वाले विश्व पर तो राज्य नहीं कर सके ना। अभी तुम योगबल से सारे विश्व का राज्य पाते हो। तुम जब थे तो और कोई धर्म नहीं था, सारी दुनिया पर तुम्हारा ही राज्य था। 5000 वर्ष की बात है और ये हिस्ट्री बाप ही आकर के बतलाते हैं, और कोई को तो पता भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजी भाग देकर के गया, तुम सारा ही खर्च कर दिया, भिखारी बन गए, परंतु तुमको लज्जा भी नहीं आती है। पीले पर जाते हो, इन बातों को समझते भी वो हैं जो भारत विश्व के मालिक थे। अब तो कंगाल हो गए, भीख मांगते रहते, भीख मांगने में लज्जा भी नहीं आती। भारत जो 100% सॉल्वेंट था वो अभी 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है, कंगाल बन पड़ा है। आठ भी इनों को सारा बारह से मिलता है। भारत में अनाज भी पूरा नसीब नहीं होता, नहीं तो पहले भारत से ही सारा अनाज विलायत में जाता था। बहुत अनाज होता था, अभी वो विदेशी रिटर्न में सर्विस कर रहे हैं, इतना अनाज बाहर से आता है, ढेर अनाज मंगाते रहते हैं। अब ये तो भारतवासी घस्सा मारते रहते हैं कि यहां बहुत अनाज हो जाएगा। अब तुम तो जानते हो कि अकाल तो पड़ना ही है, कुदरती आपदाएं जरूर आनी है। तुम बच्चों को रहने के लिए तो नई पवित्र दुनिया ही चाहिए, अभी तुम इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये सभी रचयिता और रचना का नारी जो बात ही बतलाते, आगे तुम नहीं जानते। तुम क्या कोई भी सही राय नहीं जानते? अभी निराकार बाप आए हैं, तुम भी आत्माभिमानी बनते हो तो तुम भी जानते हो, जितना जितना आत्माभिमानी नाने स्कूल बनेंगे उतना ही ऊंच पद पावेंगे। पढ़ाई है ना, जानकारी से ही ऊंच पद पावेंगे, परंतु इसमें माया की युद्ध बहुत चलती है। बाकी शास्त्रों में जो कौरवों और पांडवों की लड़ाई दिखाई है वो कोई लड़ाई की बात नहीं है। हाँ, वो है कौरव संप्रदाय, ये है पांडव संप्रदाय। तुम्हारा सेनापति कौन है? तुम्हारा सेनापति है विश्व का मालिक। वास्तव में वो विश्व का मालिक बनते नहीं है, बेताज बादशाह है। तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अभी तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का सारा चक्र फिरता रहता है, इसलिए तुम्हारा नाम ही रखा है सुदर्शन चक्रधारी। जितना जितना चक्कर लगा लेंगे उतना उतना चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मणों और भूषण देवताओं से भी तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। 29 अप्रैल 68 की वाणी का दूसरा दिन, तुम्हारी चोटी बहुत ऊंची है, यादगार में विराट रूप बनाया है, परंतु उसमें चोटी को उड़ाई दी है। तो बाप को भी उड़ाई दी है, क्यों? चोटी जब सबसे ऊंची है ब्राह्मण चोटी, और चोटी में शिवलिंग भी बनाए देते हैं, जो भक्ति मार्ग में जो विराट का चित्र बनाते हैं उसमें चोटी ब्राह्मणों को और शिव को क्यों उड़ाई दिया? देवताओं को रखा है, ब्राह्मणों को उड़ाई दिया, क्या कारण हुआ? क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो उनको हटाई दिया। बाकी देवताएं क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण दिखाते, क्योंकि उनकी ये दीनाइष्टि होती है। ब्राह्मणों की दीनाइष्टि नहीं होती है। और ये ब्राह्मण कुल तो बहुत छोटा कुल है, इनका किसी को भी पता नहीं है। कौन सा ब्राह्मण कुल बहुत छोटा है? माला भी फेरते हैं, उस माला में भी युगल मेरु है। उनका समझाया जाता है ये ब्रह्मा सरस्वती अथवा लक्ष्मी नारायण है। इसे त्रिमूर्ति का अर्थ तो कोई विद्वान आचार्य नहीं बता सकते। देखो ब्रह्मा कितना सागर बैठा है और फिर विष्णु कितना संगारा हुआ है। ये सारा है इनका देवी गुणों का संगार। इन्हें ब्रह्मा और विष्णु का संबंध का वो कोई बता ही नहीं सकता, तो उसे झट बताते हैं। ये ब्रह्मा ही एक सेकंड में विष्णु बन जाते हैं। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगती है, माने 5000 वर्ष लगते हैं। ये है 84 का चक्र। बाकी शंकर के लिए बाप ने समझाया है कि शंकर जैसा और कोई चीज या ऐसा कोई कार्टून जो बनाई दिया है ऐसा कोई होता नहीं है कि गले में उनके सर्पों की माला हो। ऐसी सर्पों की माला देख करके तो पार्वती ही डर जावे। और फिर उन पर कितना दोष रख दिया है कि धतूरा खाते थे, बाबू पीते थे। अरे वो थोड़े किसी का विनाश करते हैं, दुनिया खलास करते हैं। विनाश करना तो ये पाप की बात हो गई। शंकर को तो महादेव कहते हैं, इतना महान देवता पाप कैसे करेगा? ये सभी बातें झूठ बतलाते रहते हैं। आसुरी संप्रदाय है ना, जिसे साइंस से सुख मिलता है उसी साइंस के घमंड से दुख भी होता है। एरोप्लेन कितने सुख के लिए बनाए, वो भी नीचे गिर पड़ते हैं तो खलास हो जाता है, क्योंकि फुल प्रूफ तो नहीं है ना। सत्युग में तो सारी प्रकृति फुल प्रूफ होगी, तुम्हारी विमान भी फुल प्रूफ होंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सत्युग में फुल प्रूफ होते हैं, कब गिरते नहीं है, खराब भी हो नहीं सके। पुराना भी हो जाएगा तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वहां दुख का नाम निशान नहीं होता है। और यहां की दुनिया में सुख कम है, सुख के साथ दुख बहुत है। बाप तो तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते, बाप को पुकारते भी है बाबा आप रहमदिल हो आकर के हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते हैं कि आकर के हमको ज्ञान सुना के चले जाओ। नहीं, ज्ञान सुनाना मकसद नहीं है, आने का अहम ऑब्जेक्ट क्या है, पतितों को पावन बनाने का है। पानी को तो ऐसे नहीं बुलाते हैं कि हे पानी तुम आओ हम पतितों को पावन बनाकर जाओ। पानी कैसे पावन बना ले, पानी तो पानी है, पानी को मथने से कोई सार थोड़ा ही निकलेगा। तो ज्ञान सागर है और चैतन्य है, पानी तो पीते ही रहते हैं, उस पानी में भी कचरा आदि पड़ता है। ये नदियां तो सदियों से ही चली आ रही है, ऐसे नहीं कि कोई युग में नदियां नहीं थी। हाँ, पहले सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान। अभी तुम समझते हो बाबा आकर के हमारी आत्मा को कंसर्न करते हैं, ऐसे नहीं कि वो आकर के ब्रह्मा तन में ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर हमारी आत्मा अपने आप कंसर्न होती रहती नहीं, बाप को आना पड़े, संग का रंग लगाना पड़े, आत्मा कंसर्न होती है तो शरीर भी कंसर्न हो जाता है। जैसे झाड़ का बीज होता है, डिफेक्टेड होगा तो झाड़ भी डिफेक्टेड होगा। झाड़ में खाद पड़ती है, ऐसे तुम्हारी आत्मा में भी खाद पड़ती है। खाद पड़ती है तो सतो प्रधान से सतो बन जाते हैं, रजो बन जाते हैं, तमो बन जाते हैं। सत्युग में आत्मा प्योर थी, फिर त्रेता में चांदी की जंग चढ़ी, कितना संग का रंग लग गया। कहां 2 करोड़ आत्माएं सत्युग के अंत में, और कहां त्रेता में 8 करोड़ आत्माएं उतर पड़ती हैं चांदी समान। तो ढेर का संग का रंग लगता है ना। फिर द्वापर में तांबे की खाद पड़ती है, कलयुग में लोहे की खाद पड़ती है, लोहे समान ढेर की ढेर आत्माएं परमधाम से उतर पड़ती है। अब बाप तो है प्योर चकमक, उसमें तो कब जंक लगे ही नहीं सकता। चकमक में जंक लगता है क्या? बाप को तो जंक रहित सुई का मिसाल दिया जाता है, जैसे चकमक सुई को खींच लेती है, ऐसे ही बाप भी बिना आत्मा रूपी सुइयों की जंक उतरती जाती है, उन सुइयों को खींच लेता है। अभी तुम ट्रांसफर होते हो ना, बेसिक नॉलेज से एडवांस में ट्रांसफर होते हो ना, तो आत्मा रूपी सुई की कट उतर जाती है, बेसिकली कट उतरती है तो बाप खींच लेते हैं, फिर बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हो। तो देखो आत्मा इतनी छोटी विधि है, इस आत्मा को भी जानना चाहिए ना। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, पहले तो हर आत्मा अपनी आत्मा के बारे में जाने, क्योंकि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है, ये वंडरफुल बातें हैं। सबसे बड़ी कुदरत तो ये आत्मा की है, चीज है सब तो कुदरत कहते हैं, तो सबसे ज्यादा कुदरती है आत्मा, और है बहुत छोटी। कहते भी है प्रकृति के बीच में चमकता है जब सितारा, सितारे की यादगार क्या है? गीता लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। वास्तव में ये आत्मा के टिकने का स्थान है, तो आत्मा की स्थिति में टिकना चाहिए ना, कि टीका लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए? आत्मा की स्थिति में टिकना चाहिए। बाप को बताते बताते 70 साल बीत गए, आत्मा की स्थिति में टिकते हैं क्या? क्यों नहीं जीत पाते?
संघ के रंग में आ जाते हैं,
संघ के रंग में
आते
ही रहेंगे। एक सब नहीं टीका यहाँ देते हैं, परंतु आत्मा को तो इन आंखों से नहीं देख सकते, टीका को तो इन आंखों से देखा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार, ये वंडरफुल बात है ना। सिवाय बाप के इस वंडरफुल बात को और कोई समझा ही नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा के अनेक जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड इतना छोटा है जिसको कोई पढ़ ही नहीं सकता। तुम समझा लेंगे तो कह देंगे ये तो तुम्हारी कल्पना है। अच्छा, आत्मा का रूप कल्पना है तो भला परमात्मा का रूप बताओ। तो उन्होंने शास्त्रों में जो कुछ सुना है तो कह देते हैं कि हाँ वो हजारों सूर्यों से तेज हूं मैं। गीता में अर्जुन का मिसाल बताया है ना। बात थोड़ी कहते हैं ऐसा रूप दिखाया जो मैं सहन नहीं कर सकता हूं। हमने तो परमात्मा को देखा भी नहीं, आत्मा को देखा है। आत्मा का जब दीदार होता है तो पवित्र आत्मा का ही होगा ना। आत्मा पवित्र है, परमात्मा भी पवित्र है, दोनों के रूप में फर्क तो कुछ है नहीं। तो आत्मा भी पवित्र बनकर घर में रहती है, परमात्मा बाप भी पवित्र बनकर घर में रहता है। बाप और बच्चों में फर्क कोई भी नहीं है, रूप एक जैसा है, सिर्फ वो जन्म मरण से रहते हैं और आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। हाँ, उसमें सदैव ज्ञान है, वो सदा सिंह कहा जाता है। आत्माओं में सदैव ज्ञान नहीं रहता, जब बात आकर बताते हैं तो ज्ञान आता है। कहते हैं अच्छा मेरी आत्मा का दीदार हो जाए, अच्छा फिर उनसे फायदा क्या होगा? आत्मा भी बहुत छोटी, बाप भी बहुत छोटा, शिष्य गुरु के बाजू में बैठेगा या गुरु आकर शिष्य के बाजू में बैठेगा? तो ये भी ऐसे है। अभी बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो, पहले समझाते थे भाई बहन समझो, परंतु इसमें भी देखा कि क्यों लड़ाई हो जाती है। तो फिर अभी कहते हैं भाई भाई समझो, आत्मा आत्मा भाई भाई, ब्रह्मा की संतान समझते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं, उसमें भी फंस पड़ते हैं। अगर आत्मा ही समझेंगे तो नाम रूप से निकल जाते हैं। तो ये बड़ी भारी मंजिल है आत्मा आत्मा भाई भाई समझना, विश्व का मालिक बनना, ये कोई कम बात है क्या? मनन, ब्रह्मा की संतान तक अलग रहे, आत्मा आत्मा भाई भाई न बने तो विश्व के मालिक बने से वंचित रह जाओ। और आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज तक पहुंच गए, आत्मा रूपी सुई की सारी तक उतर गई, आत्मा को बिंदु बनाया तो विश्व के मालिक पने का नंबर वार वर्षा पा सकती है। तुम भी अभी समझते हो, अभी हमने 84 का चक्र लगा करके पूरा किया। भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने तो 84 लाख ही योनियां बतलाई थी। वो सच्ची बात है या झूठी बात है? झूठी बात है। 84 लाख योनियां नहीं है, 84 लाख योनियां तो है परंतु मनुष्य मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता। सभी गुण अनिवार्य में है। बात समझाते हैं ये तो कल के ही 5000 वर्ष का है, 84 लाख योनियों में कैसे भ्रमण करेंगे। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, तुमको वो लोग कहते हैं कि क्या इतने सभी शास्त्र झूठे हैं, तुम सीधा किसी को कहेंगे कि ये सभी शास्त्र झूठे हैं तो बिगड़ पड़ेंगे, बिगड़ पड़ेंगे, पत्थर मार बिगड़ पड़ेंगे। बोलो ये शास्त्र झूठे नहीं है, हम तो इनको आधा तंत्र से पढ़ते चले आए, पहले इनमें सच्चाई थी, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतोपदान होती है, बाद में तमोपदान होती है। तो द्वापर के आदि में जब ये शास्त्र बने थे तो इनमें सतोपदानता थी, क्योंकि लिखने वाले मौजूद थे, वो इनका सही अर्थ बताते थे। बाद में जैसे जैसे मनुष्य विकारी बनता गया, उनके अर्थ उल्टे होते चले गए, शास्त्र सभी तमोपदान बन गए। तो उनको बताओ कि ये शास्त्र तो हम भी जन जन मंत्र पढ़ते चले आए, पढ़ते पढ़ते अब हम भी तमो प्रधान बन गए। अभी बाप उन शास्त्रों का आकर सच्चा अर्थ बताते हैं, इसलिए कहावत भी है समाज में, क्या क्या समझे कवि या समझे रवि, या तो कविता करने वाले कवि ही उसका सही अर्थ बता सकते थे, जानते थे, या तो वो तो हजारों वर्ष हो गए उनको कविता किए हुए, वो तो रहे नहीं। अब भगवान अंत में आकर के उसका शास्त्रों का सही अर्थ बताते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा सार बताते हैं। भगवान को कहा जाता है ट्रुथ, अंग्रेज जो कहते हैं ना गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ माने सच्चा, सत्य ही भगवान है, सभी कुछ सत्य ही सत्य बताते, कुछ भी यह सत्य नहीं बताते, और मनुष्य जो कुछ बताते हैं वो सब असत्य ही असत्य बताते। बाप आकर सचखंड की स्थापना करते हैं, मनुष्य झूठ खंड बनाए देते, इसलिए झूठ खंड का नाम क्या रखा है, नरमन, नरमन मनुष्य, मनुष्य नरक का माने करे, मनुष्य जो करे सो नरक, और सच्चा भगवान जो कुछ करे तो सत्ययुग सच खंड। अभी झूठ खंड है, तो मीठे मीठे बच्चे जानते हो ये सच खंड का राजी लेना और झूठ खंड का राजी गवाना, ये तुम्हारा एक खेल हो गया है, 5-4 वर्ष का ड्रामा है ना, ड्रामा माने खेल। ज्ञान शिक्षा पर बैठने से राजी लेते हो और काम शिक्षा पर बैठने से राजी गवाई देते हो, इसकी शूटिंग कहां करते हो ना? तो शूटिंग में भगवान जब आ जाते तो भगवान के सामने ही इस बात की शूटिंग करते, क्या भगवान आकर राजभाग देते हैं, कितनी खुशी आ जाती है ज्ञान में आने से। उस समय सात्विक स्टेज होती, फिर धीरे धीरे खुशी गवाए देते। तो ये भी तुम्हारा खेल है, ज्ञान शिक्षा पर बैठने से राजी लेना, काम शिक्षा पर बैठने से राजी गवाना, और ये खेल भी भारत में ही होता है, बाकी तो और देशों में है बाइप्लास, जहां और धर्म पनपते रहते हैं। परंतु अपने देश का जो धर्म है वो बहुत सुख देने वाला है, कैसे और धर्म वाले तो आधा सुख और आधा दुख भोगते, और देवी देवता सनातन धर्म वाले पौना हिस्सा सुख और एक चौथाई दुख भोगते। जब कलयुग शुरू होता है तब ही दुखी होते हैं, जबकि विविचारी बनते हैं, और धर्म तो पहले से ही विविचारी। इब्राहिम आया, आते ही आंखों का इंद्रियों का भी विचार शुरू कर लेते हैं। किसी इंद्रियों वाले पहले से ही भी विचारी है। सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं थे जो अभिविचारी थे, उनमें अभिविचारी के संस्कार रहते हैं, अंत तक नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। तो हम फिर अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म की बात ही क्यों करें, जबकि हमारा धर्म इतना सुख देने वाला है। अभी भी देखो भारत में देवता धर्म की निशानियां तो है ना, क्या निशानियां है? अरे देवताओं के मंदिरों में चित्र है ना, मूर्तियां बनी हुई है ना, मणियंत्री कभी विश्राम दिया जाता है। ये तो और सभी धर्म हमारे आज सनातन देवी देवता धर्म की ब्रांचेस है, असली धर्म तो हमारा है। ये बड़ की झार का भी देखो कितना बंदर है, ये बड़ का झार बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, बड़ का झार। हमारा आज सनातन देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है वो अभी है नहीं, क्यों नहीं है, है? आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन कहां चला गया, कैसे लोप हो गया, कारण क्या हुआ? अरे भगवान चला गया, संगम युग में था, संगम युग में आकर के उसने फाउंडेशन डाला, काहे के द्वारा, ज्ञान जल के द्वारा। वो ज्ञान जल का फाउंडेशन खलास हो जाता है, जैसे ही पेड़ ऊपर आया ज्ञान जल का फाउंडेशन खलास हो गया। तो ये देवी देवता सनातन धर्म प्राय लोप हो जाता है। प्राय लोप होने का मतलब जहां जहां जड़े नीचे हैं, पानी थोड़ा बहुत मिल रहा है, जड़ों में नमी मिल रही है, तो फाउंडेशन है, और ऊपर आने पर जड़े सारे खलास हो गए, तो फाउंडेशन जैसे खत्म हो गया। और धर्म आ जाते हैं और देवी देवता सनातन धर्म खलास हो जाते हैं। तो बाकी सभी धर्म खड़े, बाप कहते हैं मैं आता हूं आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। अब देवी देवता सनातन धर्म का छुर क्यों नहीं रहा? वो जो है प्राय लोप होती है, आज सनातन धर्म प्राय लोप होता है। कारण क्या है, पूरा लोप क्यों नहीं हो पाता है?
अविनाशी है,
अविनाशी है तो अविनाशी क्यों पूरा लोप हो जाए, जैसे और धर्म लोप हो जाते हैं। इस समय संगम युग में जब बाप आते हैं तो जो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं सब एक जैसे नहीं, कोई तो पूरी पूरी पढ़ाई उठाते हैं, जो पढ़ाई को पूरा ही पूरा उठाएंगे तो पूरा पूरा नॉलेज उठाने वाले अंत तक उनकी नॉलेज कायम नहीं रहेगी, तो वो नवी ज्ञान की कायम रहती है। इसलिए जो देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन है वो कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा रहता है, जो अष्ट देवताएं हैं उनमें तो वो फाउंडेशन जरूर रहता ही है, फिर और सभी खलास हो जाते, वहां भक्ति का नाम नहीं रहे। बाप कहते हैं सबसे जास्ती भक्ति भी मैंने की है और तुम बच्चों ने की है। ये कौन बोला है? तो आप कहते हैं सबसे जास्ती भक्ति भी मैंने और तुम बच्चों ने की है। ये मैंने किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने अपन को बाप समझ करके बोला, इसलिए बोला बाप कहते हैं। वो अपन को क्या समझा कि मैं इस मनुष्य शक्ति का बाप हूँ। तो बाप कहते हैं सबसे जास्ती भक्ति मैंने और तुम बच्चों ने किए, जो बच्चिया से रीति धारण करे और दूसरों को कराते हैं वो ही पहले भक्ति में भी थे, पहले ज्ञान में भी आते हैं। क्या अच्छी रीति धारणा करें, अच्छी रीति बाप को पहचाने और दूसरों को अच्छी रीति बाप की पहचान और धारणा कराए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ज्ञान में भी पहले आते हैं और भक्ति में भी पहले आते हैं। अभी बिचारी भक्ति शिव बाबा की उन्होंने की थी, जो इस समय बहुत होशियार टाइम जो इस समय ज्ञान में बहुत होशियार है, उन्होंने अभी बिचारी भक्ति की होगी इसलिए बहुत होशियार। ज्ञान तीखा कब होता है? व्यभिचारी होने अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान तीखा होगा, या एक से ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान तीखा होगा? एक से सुनेंगे तो ज्ञान तीखा होगा, अनेकों से सुनेंगे, कहीं विष्णु पार्टी में जाएंगे, कहीं इधर जाएंगे, कहीं उधर जाएंगे, तो क्या होगा? ज्ञान में उतनी पावर नहीं रहेगी प्योरिटी की। तो तुम अभिचारी भक्ति करते हो, अभिविचारी ज्ञान सुनते हो, इसलिए तुम्हारे में बहुत शक्ति, बाकी और धर्मों में इतनी शक्ति न होने के कारण वो नंबर वार बन जाते हैं। सभी धर्म तो सत्युग में नहीं आवेंगे, सब आवेंगे सत्युग में, क्या कौन आवेंगे? जो अभिविचारी ज्ञान उठा देंगे वही बोल सत्युग में आवेंगे। बाकी चंद्रवंशी है, अभी विचार ज्ञान उठाते हैं ब्रह्मा बाबा है, सब धर्मों के प्रभाव में आ गए। यज्ञ के आदि से ही ब्रह्मा बाबा सब धर्मों के प्रभाव में आ गए, सारा धर्मों ने उनके ऊपर उनकी गोद में अपना कब्जा जमाया। तो जो ऊंचे से ऊंचा संगम युग का स्वर्ण सुख है वो उनको अपने शरीर से भोगने में नहीं आता, तो सभी सत्युग में नहीं आवेंगे, जो पीछे आने वाले हैं वो अभी भी आते रहते हैं, पीछे आते रहते हैं, वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। और जो स्वर्ग का लक्ष्य बाबा देते हैं वो सत्युग के पहले जन्म का लक्ष्य देते हैं, या उससे भी ऊंचा ऊंचा कोई सुख है? कौन सा? संगम का जो स्वर्ण संगम युग में डायरेक्ट इसी जन्म में मिलता है, जैसे पढ़ाई के उपलक्ष्य में, वो अभी का सुख है, जो डायरेक्ट बाप से, डायरेक्ट बाप सत्युग में जो जन्म मिलेंगे उनको डायरेक्ट से डायरेक्ट बाप से वो सुख का वर्षा नहीं मिलेगा। तो ये भी बड़ा हिसाब किताब है, और ये बड़ा हिसाब किताब भी तुम्हारी बुद्धि में बैठता है और कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। ये हिसाब किताब की बातें तुम अभी सुनते हो, और तो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। तुम भी घर में गए धंधे आदमी से भी भूल जाते, तुम्हारी झोली खाली हो जाती है, यहां से बाहर गए और खलास। टीचर तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं, हाँ फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? पढ़ाई पढ़ते समय कोई योग युक्त नहीं है, मन कोई सो रहा है, या कोई की बुद्धि इधर उधर चली गई, बाल बच्चों में फंस गई, तो पढ़ाई का पॉइंट मिस हो जाएगा ना। तो कोई योग युक्त नहीं है तो झोली में ठहरता नहीं है, झोली में छेद कौन सी झोली है? बुद्ध रूपी झोली में छेद हो जाता है तो निकल जाता है, बह जाता है। बाप तो सभी की झोली एक जैसी भरते, लेकिन ध्यान न देने के कारण, अटेंशन न देने के कारण झोली बह जाती है। इसे पढ़ाते तो एक रस, फिर कोई फेल होते हैं, फेल होने वाले भी होते हैं और कोई पास ही नहीं, इसका स्कॉलरशिप ले लेते हैं। तो कोशिश करके ऐसी पढ़ाई पढ़ना चाहिए जो स्कॉलरशिप मिल जावे। तुम कहते भी हो हम आए ही हैं नर से नारायण बनने, नारी से लक्ष्मी बनने, बाप सत्यनारायण की कथा सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं। और त्रिसठ जन्मों में भक्ति मार्ग में जो सत्यनारायण की कथा सुनी है वो तो बकोड़ा, सिर्फ नाम मात्र है, नाम दिया है सत्यनारायण की कथा, लेकिन उसमें सत्यनारायण की कथा होती ही नहीं है। अभी सत्यनारायण की सारी कारधन बन गई, पूरी कथा तुम्हारी समझ में आ जाएगी। पर अब पहले मिशन इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। कहते हैं कि ये पहाड़ तोड़ तोड़ करके इतने मकान बने, फिर पहाड़ कैसे बन जाएंगे? अरे ये ड्रामा का चक्कर रिपीट होता रहता है, फिर भी होगा वो रिपीट होगा। सोमनाथ का मंदिर भी बनेगा, खालियां फिर भी भरपूर हो जाएंगी। इसमें राज क्या है?
हर चीज जो है कि जब विनाश का पेट होता है तो अपने अपने रत्नों में हमसे विलीन हो
जाता है। कैसे विलीन हो जाता है? उसका राज क्या है? बड़े बड़े भूकंप आते हैं तो पृथ्वी के अंदर सारा लावा हुआ पड़ा है हमारी गर्मी के, तो सब एक रस होता रहता है। जैसे मिक्सी में कोई चीज डाली जाती है तो सारा एक रस हो जाता है। ऐसे ही वो कण जो जहां का है वो वहीं पहुंच जाता है। फिर अर्धविनाश होता है द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में, जो जितना बाहर आना होता है सो फिर बाहर आ जाता है, जो अंदर जाना होता है वो अंदर चला जाता है। तो सचिव आज में ये खानियां फिर भरपूर हो जाएंगी। अभी तो ये धरती सारी कलराती है, तो अनाज आदि में भी इतना स्वाद नहीं होता है। ये ज्ञान बाप ही आकर के देते हैं। अभी अनाज पैदा करते हैं कैसे करते हैं? यूरिया, यूरिन से बनता है यूरिया। यूरिन माने गंध खाद। तो अनाज भी कैसा होता है? थोड़े दिन रख दो कीड़े ही कीड़े, कीड़ों का अनाज खाना पड़ता है तो स्वाद कहां से आएगा? इन बातों का ज्ञान बाप ही आकर के देते हैं। बाकी तो सभी भक्ति ही करते हैं, भक्ति जन्म जन्मांतर की जाती है और ज्ञान ज्ञान से भी एक जन्म में उठाया जाता है, वो भी अंतिम जन्म में। ऐसे नहीं कि संगम युग में दो तीन जन्म होते हैं तो पहले जन्म में कोई ज्ञान उठा लेता है, नहीं, कब उठाते हैं? अंतिम जन्म में ज्ञान उठाते हैं। और ज्ञान मिलता भी एक से है, एक ही जन्म में ज्ञान उठाते हैं और एक से ही ज्ञान मिलता है। बाप ही आकर के ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान से सदगति क्यों होती है? क्योंकि देने वाला सत्य है, सुखदार फादर है, उसके ज्ञान से ही सदगति होती है। बाकी तो सब है झूठ, तो उससे दुर्गति होगी ना। गुरु लोग सदगति देने वाले हैं या दुर्गति देने वाले? गुरु लोग सब है झूठे। अभी सबके पर टूटे हुए हैं, कौन से पद? ज्ञानियों के पंख टूटे हुए हैं, तो कोई की आत्मा उड़ नहीं सकती, वो अंधेरा फैल गया है, ज्योति साहब की बुझी हुई है। बाप सामने बैठती है तो बैटरी भरती है, परंतु सभी थोड़े ही बाप से योग लगाकर बैठते हैं, बुद्धि कहां की कहां भागती रहती है, कहां ना कहां बुद्धि भाग जाती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, कोई निर्णारा कोई नवदा भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार हो जाते हैं, जो साक्षात्कार होता है तो समझते हैं हमें भगवान मिल गया। बाप कहते हैं तो भगवान से तो कोई भी नहीं मिलता भक्ति में, भगवान भक्ति मार्ग में होता ही नहीं है, सिर्फ मेहनत का फल साक्षात्कार हुआ। जैसे सपने में कोई चीज देख ले, कोई मिल जाए तो क्या मिलना कहा जाएगा, नहीं। ऐसे ही भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कोई भगवान मिलता नहीं है, भावना का भाड़ा मिल जाता है बस। तो वो कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है। बाप आकर मीठे मीठे रूहों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं पतित पावन हूं, क्या कहते हैं मेरा साकार है या निराकार है, कहना तो तभी होगा जबकि मुख से बोलेंगे, तो साकार भी है लेकिन कहने वाला निराकार है। मैं पतित पावन हूं, मतलब पतित शब्द पहले क्यों, पावन शब्द बाद में क्यों, पतितों को पावन बनाने के लिए पहले पतित साकार चाहिए, उसके बगैर पतितों को पावन बनाना नहीं हो सकता। तो बाप कहते हैं ये याद करो, बाप भी बच्चों को याद करते हैं, बच्चे तो इसलिए याद करते हैं कि पतित हैं। पावन बाप एवर प्योर बाप को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे, बाप क्यों याद करते हैं,
बच्चों का सहयोग ले सकते
हैं,
सेवादारी बच्चों का।
हाँ, बाप जानते हैं कि मैं तो निराकार हूं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, करता है क्या करता है, मैं तो अकर्ता हूं, करने वाले कौन है, करने वाले तो बच्चे ही हैं। तो जो बच्चे करेंगे सो पालेंगे, करेंगे तो मैं उनको याद करूंगा, नहीं करेंगे तो मैं उनको याद क्यों करूंगा। माना जो सबसे उन बच्चे हैं उनको ही बाप याद करते हैं, याद उनको करेंगे जो अच्छी रीत सर्विस में लगे रहते हैं और याद की यात्रा में लगे, याद की यात्रा में रहना भी सर्विस है। कैसे, वायुमंडल शुद्ध होता है, सबसे अच्छी सर्विस है याद में रहने की। अंत में कैसी सेवा करेंगे, माउंट आबू में बैठ गए वहां कोई सर्विस करेंगे किसी, नहीं वाचा ही नहीं होगी, वहां तो वाणी से परे होकर के बैठेंगे। लेकिन वायुदेशन से सारी दुनिया की, सारे संसार की सर्विस होती रहेगी। ऐसे ऐसे बच्चों को बाप उनकी आत्मा को भी और शरीर को भी याद करते हैं, शरीर बिगर तो आत्मा याद आ ही नहीं सकती, पहले शरीर पीछे आत्मा, इसलिए कहते हैं पतित पावन, पहले पतित शरीर फिर एवर प्योर पावन। यानी कि आत्मा याद करती है तो फलाना याद आने का ना, मनोहर है, कुमार का है, मोहिनी है, बहुत अच्छा याद करती है। जब ये नाम लिए जाते थे तो बाबा बेहद में नाम लेते हैं या हद में नाम लेते हैं, बाबा तो बेहद में नाम लेते हैं, जिनकी बुद्धि हद में धरी रहती वो समझते हैं हमारी बड़ाई कर रहे हैं। मनोहर है तो सर्विस हो गई, बाप प्रत्यक्ष हुआ, नई दुनिया की स्थापना हुई, नहीं सब शरीर छोड़ते चले जा रहे, तो बाप समझते हैं ये बहुत अच्छा याद करती है। तो बहुत अच्छा याद तो तब करेंगे जब बाप को पहचान, बाप को पहचाना ही नहीं, और याद बहुत अच्छी कैसी हो जाती है, जो बहुतों की सर्विस करते हैं उन्हें बाप दिया सर्विस विगर मनोहर कुमारी का मोहिनी रह नहीं सकती। जैसे बाबा भी सर्विस पर आए, बाबा सर्विस विगर रहते थोड़ा ही है, बाबा की सर्विस तो रात दिन है। कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, बाबा मुरली मुरली जरूर सुना दे। हॉस्पिटल में होता हूं तो दो चार दिन रोगी नहीं चलाते
हैं,
दो चार दिन नहीं चलाते हैं। किसकी बात बोली? ब्रह्मा की बात बोली। कुछ भी हो बाबा मुरली जरूर सुना लेंगे। हॉस्पिटल में होता हूं, ये किसने बोला?
ब्रह्मा।
ये बाबा की बात नहीं,
बाबा तो बस चला।
हाँ, हॉस्पिटल में होता हूं तो दो चार दिन नहीं चलाते, फिर लिखता हूं। वो भी जैसे मुरली चली, मुरली नारेज को कहा जाता है, ये है ही पढ़ाई। बाप कहते हैं मैं सुप्रीम टीचर हूं, सुप्रीम बाप भी हूं, लौकिक बाप बड़ा या पारलौकिक बाप बड़ा? लौकिक बाप कोई सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु, सुप्रीम बाप थोड़े ही है। ये लौकिक बाप भी 84 जन्म में 84 बाप हुए, इसको याद करते हैं?
पारलौकिक बाप,
पारलौकिक बाप को याद करते हैं।